याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 9 वचन से लेकर 18 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। पिछले इतवार को हमने देखा याकूब की पत्री पहला अध्याय 1 से 8, और आज हम देखेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 9 वचन से 18 वचन तक। आइए हम उसको पढ़ें। इसमें लिखा है, वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपने हीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता जाती रहती है। इसी प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करते हुए धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर वो फंस कर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप खो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और न छाया के समान परिवर्तनशील है। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया, जिससे हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानो प्रथम फल हो। पिछली बार हमने देखा परीक्षा के बारे में, परीक्षाओं में परमेश्वर को जानना, प्रभु जी को जानना, उसके बारे में हमने 1 से 8 वचन तक हमने देखा। जैसे हमने बताया कि उसका जो संदेश है, याकूब की पत्रिका पूरे पत्रिका जो संदेश है वो ये है कि हमारे विश्वास के अनुसार हमें कार्य भी करना है। जो विश्वास प्रभु में हम करते हैं, जिस विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अनुसार दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में हमारे कार्य दिखने बहुत जरूरी हैं, और तभी कार्य को देखकर हमारे विश्वास को लोग परखते हैं, लोग देखते हैं कि ये कार्य ये कर रहे हैं, और इसीलिए कि उनका यह विश्वास है, और इसीलिए हमारे अच्छे कार्य को देखकर लोग हमारे विश्वास को जानने पाए। तो हमारे विश्वास को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शित करने के लिए हमारे कार्य को हमें देखना है, और ये संदेश पूरे याकूब की पत्री में 1 से लेकर 5 अध्याय तक अलग अलग बातों में याकूब यहाँ पर हमें बताता है। हमने देखा 1 अध्याय पहली आयत से 8 आयत तक हमने देखा कि परीक्षाएं जीवन में आएंगी, और जब परीक्षाएं आती है, जीवन में परीक्षा को आना है, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि लिखा है हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हर किस्म की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से हम गुजरेंगे, हम जाएंगे, और ये जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो ये बहुत ही आनंद की बात है, याकूब का यहाँ पर कहना है। और क्यों अच्छी है? क्योंकि हमारे विश्वास को परखा जाता है। जो विश्वास हम करते हैं वो परखा जाता है कि हम कहाँ पर हैं, हम अपने प्रभु जी को कितना जानते हैं, हम कैसे जानते हैं, और वो विश्वास हमारा परखा जाता है, और इसीलिए याकूब कहता है कि आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, और जब विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होती है, और इससे तुम विश्वास में स्थिर बने रहते हो, परिपक्व बने रहते हो, और इसीलिए तुम्हें उस विश्वास को जब परखा जाता है तो उस समय में तुम्हें बुद्धि की आवश्यकता होती है और इसीलिए मांगो। जो प्रभु बिना उलाहना रखे हुए देता है उस प्रभु जी से मांगो, प्रार्थना करो, मांगो और वो तुम्हें देगा। विश्वास की परीक्षा में से पार होने के लिए तुम्हें देगा। संदेह न करो, समुद्र की लहर की तरह ना रहो। और ये बात हमने 1-8 वचन के अंदर में देखी। आज का जो खंड है, आज का खंड जिसको हम देखने वाले हैं, आइए उस खंड की तरफ में हम जाते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात हम देखना चाहते हैं इस खंड के जरिए, वो ये है कि परीक्षा एवं प्रलोभन को समझना। यहाँ पर दो बातें हैं, परीक्षा है और प्रलोभन है। उन दोनों को हमें अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम उन दोनों के अंदर में भेद कर सके, देख सके और कहां हमें कैसे करना है वो हम समझ सके। और इसके लिए परीक्षा और प्रलोभन को हमें समझना, ये बात आज हम देखना चाहेंगे। इसमें दो हिस्से हैं। सबसे पहला वचन 9-12 तक जब हम देखेंगे तो उसमें परीक्षा क्या है उसको समझना, फिर से जो हमने 1-8 में देख लिया उसको फिर से हम देखेंगे 9-12 में। वहां पर उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को हम देखेंगे और उसमें केवल हम देखेंगे कि परीक्षा क्या है उसको कैसे समझा जाए। और 13-18 जो पद है, प्रलोभन क्या है उसको हम देखना चाहेंगे। तो आइए हम अपने बाइबल में फिर से यहां पर जाए और उसको समझने की कोशिश करेंगे। वचन 9, उसमें लिखा है कि वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपनी हीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की भांति समाप्त हो जाता है। यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में हमें बताया गया है, एक दीन भाई है और एक धनी है। दीन और धनी, याकूब जब ये पत्र को लिखता है तो वो अपने श्रोताओं को ध्यान में रखता है, जो लोग जिनको वो लिख रहा है इस पत्र को, उसको ध्यान में रखते हुए वो इस बात को वहां पर लिखता है। क्योंकि उसकी कलीसिया में, यरूशलेम में जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग सब तितर भीतर हो गए थे, अलग अलग जगह पर पहुंच गए थे, उनमें बहुत सारे जो लोग थे गरीब लोग थे, दीन लोग थे और बहुत सारे धनी लोग भी थे। और इसीलिए याकूब को ये लगा, ये महत्व की बात है कि हम इस विषय के ऊपर में कुछ उनको बताएं, उनको उत्साहित करें, उनको समझाएं। और इसीलिए याकूब यहाँ पर दोनों किस्म के व्यक्ति के बारे में लिखता है। आइए हम दोनों किस्म के व्यक्ति के बारे में एक एक करके थोड़े समय के लिए देखेंगे। यहाँ पर लिखा कि दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करें। ये दीन भाई कौन है? यहाँ पर जब याकूब लिखता है तो ये मसीही लोगों के लिए लिखता है, जो विश्वासी है उनके लिए लिखता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दीन है वो एक मसीही है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उद्धार पाया है। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा है जो प्रभु को जानता है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है। लेकिन साथ साथ में उस समय में काफी लोग बंधुआई में थे, जेल में बंद रहते थे। और जब जेल में बंद थे तो वो जो लोग थे जो जेल में, जिनको अलग अलग कारण से डाला जाता था, बंधुआई में एक मजदूरी करते थे, तो उन लोगों के लिए ये लिखा है। तो ऐसे भी लोग थे जो बंधुआई में थे, जो जेल में बंद थे, वो लोग सामाजिक तौर पर उनको, उनका जो स्थान है वो बहुत ही नीचा था ना, समाज में उनको आदर नहीं मिलता था, समाज में वो नीचा उन लोगों को समझते थे और वो बिल्कुल उस रीति से थे। आर्थिक तौर पर उनके पास में पैसा नहीं था, उनकी मजदूरी शायद वहां पर उनको नहीं मिलती थी, उनको काम करना था, उनको जो खाना मिला उस खाने को वो खाते थे। और उस रीति से आर्थिक तौर पर भी वो लोग बहुत ही पीछे थे, रोटी कपड़ा ये जो बेसिक नीड उनकी होती थी शायद वो भी बहुत मुश्किल से उनको मिलती है। ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जो राजनीतिक तौर पर जिसका कोई अधिकार नहीं है। बाहर में जब कोई भी काम करने के लिए अगर वो जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर उनको कोई पूछता नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। बिना अधिकार के वो है गरीब, बिल्कुल गरीब, और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति है जो मूल अधिकार को खोया हुआ है, एकदम निराश है, आशाहीन व्यक्ति है, अपने आप को अपने मन में बहुत संकुचित विचार रखता है, संकुचित महसूस करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कहा है कि दीन भाई, गरीब भाई। उसको क्या लिखा है? उसके लिए कहा कि दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे, उच्च पद पर गर्व करे। का मतलब कि तुम दीन हो, गरीब हो, समाज से तुम्हारा कोई नाता ज्यादा है नहीं, आर्थिक रीति से तुम कंगाल हो, लेकिन याकूब उनको ये कहता है कि तुम्हें तुम्हारे उच्च पद के ऊपर में गर्व करना चाहिए। उच्च पद क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह में जो तुम्हारा स्थान है, प्रभु यीशु मसीह को तुमने पाया है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर में है, और उस समय में ऐसे तुम व्यक्ति हो, और इसीलिए ये जो उच्च पद तुम्हें दिया गया है उसके ऊपर में तुम्हें गर्व करना चाहिए। रोमियो की पत्री 8:14 को हम निकालेंगे। परमेश्वर के संतान होने के बारे में यहाँ पर दिखाती है, 8:14 के अंदर में यहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। यानी कि इन दीन भाइयों को जब याकूब कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास में कई चीजें नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हो तुम। फिर 16:17 के अंदर में लिखा है कि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ये बात उनको लिख रहा है कि हम परमेश्वर की संतान है, उत्तराधिकारी है, और हम मसीह यीशु में दुख उठाते हैं, लेकिन उसके साथ में महिमावंत भी हम होने वाले हैं। तो उनको याद दिलाता है कि तुम्हारा स्थान ऊंचा है, उच्च पद तुम्हें दिया गया। पहला पत्रस के अंदर में यही लिखा है 2:9 के अंदर में कि तुम पवित्र प्रजा हो, चुना हुआ वंश हो, राज की याजक गण हो, परमेश्वर की निज संपत्ति हो। ये बात उनको याद दिलाता है कि तुम ऐसे ही नहीं हो, तुम एक पवित्र प्रजा हो, एक राज की वंश हो, और इसीलिए जो उच्च पद प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें मिला है उस पर तुम गर्व करो, उस पर तुम घमंड करो, तुम्हारी निराशा को छोड़ दो, तुम जिस रीति से संकुचित मन से सोचते हो उसको भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा पद प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही ऊपर है। मत्ती के अंदर में प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने जब लोग बैठे थे तो वही कहते थे, मत्ती 5:3-5 के अंदर में, कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है ऐसे लोग जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो सांत्वना पाएंगे, धन्य है जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के उत्तराधिकारी वो बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात याकूब उनको समझाना चाहता है, कहना चाहता है यहाँ पर कि दीन भाई अपने उच्च पद के ऊपर में गर्व करे, गर्व महसूस करे। 10:10 में जब हम देखते हैं तो वहां पर दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया है, धनी। उसमें लिखा है कि और धनी अपने हीन दशा पर गर्व करे, अपनी हीन दशा पर गर्व करे। ये धनी व्यक्ति कौन है? वो भी विश्वासी व्यक्ति है, यहूदी है, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला है, कलीसिया में है, कलीसिया का हिस्सा है, और उसको ये लिखा जाता है, उसके पास में धन है, उसके पास में शायद रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था है, उसके पास में जमीन शायद है, उसके पास में बहुत धन है, यानी कि धनी व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और धनी व्यक्ति को यहाँ पर अपनी हीन दशा के ऊपर में वो गर्व करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब धनी के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है, हम जब पांचवें अध्याय में आएंगे तो पांचवें अध्याय में खास उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हम देखेंगे। लेकिन धनी को ये बताया गया यहाँ पर कि वो पृथ्वी पर जो धन संचय करता है उससे मत करो। मत्ती 6 के अंदर में, वही पहाड़ी उपदेश के अंदर में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं उस धन को, जहां चोर सेंग लगाकर चोरी करते हैं, तो ऐसा जो धन तुम इकट्ठा करते हो उसको मत करो। लेकिन ऐसे जगह पर धन इकट्ठा करो कि जहां उसका काम हो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। उस धनी व्यक्ति को कहा जाता है और कहा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। धनी व्यक्ति को यहां पर कहा, आइए हम मरकुस की किताब में जाएंगे और एक धनी व्यक्ति के बारे में यहां पर लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। मरकुस 10 के अंदर में हम यहां पर देखते हैं 13 आयत के आगे में, और खास तौर से 17 आयत से देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यात्रा कर रहे थे, जाकर प्रचार कर रहे थे, तब एक मनुष्य वहां पर दौड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है 17 आयत से, और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि हे उत्तम गुरु। प्रभु यीशु मसीह को वो संबोधन करता है, वो स्वीकार करता है कि यीशु एक गुरु है, और इसीलिए उसको कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। 17वीं आयत में, तब यीशु 18वीं आयत में उसको उत्तर देते हैं और उसमें लिखा है कि परमेश्वर के अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं है। 19, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, वगैरह वगैरह। और फिर 20वीं आयत में कहता है, उसने उससे कहा कि हे गुरु, बचपन से ही इन सारी बातों को पालन करते आया हूं। वो कहता है कि मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं तो ना तो चोरी करता हूं, ना तो व्यभिचार किया है, ना तो झूठ बोलता हूं, ना गवाही ऐसी देता हूं, ना छल करता हूं, मैं तो बहुत भला हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तब प्रभु यीशु मसीह उनको 20वीं आयत में कहते हैं, उसने उससे कहा कि हे गुरु, मैं बचपन से ही ये करता है। फिर 21वीं आयत में उससे देखकर प्रभु यीशु मसीह को बहुत दया आई और उसको कहा कि तुझमें एक बात की कमी है, एक बात की कमी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में मिलेगा, और आकर मेरे पीछे चल। यह वचन सुनकर उसका मुंह म्लान हो गया और वह दुखी होकर वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। फिर 23वीं आयत में, 24वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्य को कहते, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। चेले उसके शब्द से चकित हुए, परंतु यीशु उनसे फिर से कहने लगा, हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना अधिक सरल है। धनवानों के बारे में यहाँ पर यह लिखा है कि धनवान हो, धन है तुम्हारे पास में, लेकिन उस धन का इस्तेमाल कैसे करना, उस धन के कारण तुम घमंड मत करो, जो तुम्हें मिला है उसके कारण तुम घमंड मत करो, लेकिन नम्र बनो, नम्र बनो। और बहुत सारी बातें धनवानों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन नीति वचन के अंदर में जब हम पढ़ते हैं 30 अध्याय के अंदर में, तो वहाँ पर जो लेखक वो ये कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे न तो धन न निर्धनता दे, न तो धन न तो निर्धनता दे, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारा धन मैं उस पर उसको प्रेम करने लगूं और मैं तुझे भूल जाऊं। और ऐसा ना हो कि मैं निर्धन रहूं, गरीब बन जाऊं और मैं चोरी करके तेरे विरुद्ध में पाप करूं। हम देखते हैं कि यहाँ पर गरीब और धनी ये दो व्यक्ति का उदाहरण दिया है कि परीक्षाएं आती है दोनों किस्म के लोगों के ऊपर, और कई बार हमें मालूम नहीं होता है कि हमें कैसे उस परीक्षा से पार होना है। और इसीलिए यहाँ पर नीति वचन के अंदर में लिखा है कि प्रभु ना तो मुझे धनवान बना ना तो मुझे गरीब बना, मुझे प्रतिदिन की रोटी दे। बहुत मुश्किल हो जाता है किसको धनी कहना और किसको गरीब कहना आज के जमाने में, है ना, किसको गरीब कहना। क्योंकि अगर कोई गरीब कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं तो उससे भी अधिक गरीब और मिल जाते हैं। जब उनको कहते हैं कि हाँ ये गरीब है, फिर उससे भी गरीब और मिल जाते हैं। धनवान भी कि मेरे पास में चलो सब कुछ है, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो मुझे मिल रही है, उससे अधिक थोड़ा सा बैंक में मैंने बचा के रखा है, कुछ मैंने इधर रखा है, मैंने कहीं एक्स्ट्रा जमीन लेके रखी है, मेरे पास में और भी कुछ है। और लेकिन उसके बाद में देखे तो एक दूसरे के पास में दो मकान है, किसी के पास में तीन मकान है, किसी के पास में बड़ी जमीन है, और देखते देखते हम किसको कहें कि कौन धनवान और कौन गरीब। हमें तय करना है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको हमको गरीब परिस्थिति में रहने के लिए रखा है, दीन बना के रखा है या धनी बना के रखा है। अगर दीन बना के रखा है तो प्रभु का वचन कहता है कि उच्च पद में गर्व करें। अगर धनी बनाया है तो प्रभु कहता है कि तुम अपने धन पर गर्व ना कर, क्योंकि जानता है क्या होगा तेरा। और इसीलिए आगे जब हम पढ़ते हैं 10वीं आयत में, और धनी अपनी हीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा, सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता जाती रहती है। इसी प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करते हुए धूल में मिल जाएगा। एक बार धनी का सारा धन खत्म हो जाएगा, चाहे वो इस संसार में हो, उसकी बिजनेस का हो, जो काम उसने इकट्ठा करके रखा हो इस संसार के अंदर में, या तो जब प्रभु आएंगे उस समय में उस धन का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यही है यहाँ पर जो उदाहरण दिया है कि फूल की भांति, घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा धनी, और जैसे सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है, घास सूख जाता है। कल हम जा रहे थे, हमारी बिटिया गांव में जा रहे थे, वो घास के फूल को देखकर कहती कि पापा ये बहुत अच्छे फूल लग रहा है। तो हमने बताया कि हम उसके बारे में कल आपको बताएंगे, लेकिन ये है कि घास का जो फूल जब कड़ी धूप आती है वो सूख जाता है और चला जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह धनी भी उसका धन उस रीति से खत्म हो जाता है, और इसीलिए हीन दशा यानी कि वो अपने नम्र पद के ऊपर में, अपने नीचे पद के ऊपर में धनी उस पर गर्व करे, ना कि अपने धन के ऊपर। और आगे जब हम देखते हैं 12वीं आयत के ऊपर में, तो हम और परीक्षा के बारे में देख रहे हैं। 9 से 12 में परीक्षा के बारे में देखते हैं कि परीक्षाएं गरीब के ऊपर में आती है, परीक्षा धनी के ऊपर में आती है। किस रीति से हमें गरीब होने के नाते उच्च पद पर गर्व करना, किस रीति से धनी होने के नाते हमें नीच पद के ऊपर में, हीन दशा के ऊपर में गर्व करना, यहाँ पर लिखा है। जब 12वीं आयत में आते हैं तो ये 12वीं आयत बहुत ही महत्व की आयत है। ये दो जो पहला अध्याय 1 से 8 और 9, 10 और 11 के बीच में उसको दी गई है, और यहाँ पर जो परीक्षा है उसके बारे में उसका सारांश दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है 12वीं आयत, आइए हम उसको पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। आइए हम देखेंगे विस्तार से इसमें। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहना, यहां पर जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है उसको कहा गया है कि वो धन्य है, वो धन्य है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नजदीकी से पहचानता है, वो जानता है, वो धीरज रखता है। जब स्थिर रहना है तो धीरज रखना है, बुद्धि को मांगता है, वो डगमगाता नहीं है, वो इधर उधर जाता नहीं है, डगमगाता नहीं है, लेकिन स्थिर बने रहता है कि परीक्षा आई है और इस परीक्षा के अंदर से पार करना है। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक बड़े आनंद की बात है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे विश्वास को परखा जाएगा, और मेरे विश्वास को जब परखा जाएगा तो मेरे अंदर में धीरज उत्पन्न होने वाली है और मैं परिपक्व बनने वाला हूं। तो ये जो समझ परीक्षा की उसके अंदर में होनी चाहिए कि जितनी भी जो भी परीक्षा मेरे अंदर में है वो मुझे मजबूत करने के लिए यहाँ पर है। और इसीलिए कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वो खरा निकलता है, उसमें से खरा निकल कर बाहर आता है, खरा निकल कर बाहर आता है। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी 13:10 के अंदर में ये बताया है कि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षाओं में नहीं पड़ने देता जो हमारे सहने से अधिक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा नहीं दी गई है जो हमारे सहने से अधिक परीक्षा हो। और जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा को जब भेजते हैं, तो उसको वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी प्रभु हमें दिखाता है। हमें ढूंढना है कि क्या रास्ता है, परमेश्वर ने हमें परीक्षा के बारे में क्या कहा है, कैसे हमें इसमें स्थिर रहना है, कैसे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए भी हमें वहां रास्ता दिया गया। इसी उदाहरण को लेते हैं कि अगर एक धनी वो धन को प्रेम करने लगता है, प्रभु को प्रेम करने से धन को प्रेम करने लगता है, वो प्रभु को जानता है लेकिन फिर उसके पास में बहुत धन है, और फिर धीरे से उसका जो मन है वो जहां उसका धन है उसके ऊपर में चला जा रहा है, प्रभु को वो छोड़ रहा है, प्रभु से दूरी बनाए रखता है, और वो धन को प्रेम करते करते धन में चला जाता है और परमेश्वर को दूर करता है, वहां पर वो पाप करता है, वो स्थिर वहां पर नहीं है, वो धन के कारण परमेश्वर को छोड़कर दूसरी जगह में जाता है। उसी तरह से गरीब एक अपने आप को बहुत नीचे झुकाता है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत हीन हूँ, मुझ पर दया की जाए, और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, कोई चारा नहीं है, और इसीलिए मैं जाके चोरी करूँ या मैं गलत काम करूँ जिससे मेरे पास में पैसा आए। और वो गरीब होते हुए धीरे धीरे उस परमेश्वर से दूर होकर चोरी करने के लिए चला जाता है और फिर वो पाप में वहां पर गिरता है। वो वहां पर जो परीक्षा उसके जीवन में आई है उसमें वो स्थिर नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ कमी है, वो अपने प्रभु को कम जानता है और गरीबी के ऊपर में वो ज्यादा ध्यान करता है। विश्वास जो हम करते हैं उसके कारण सताव होता है। हम यहाँ पर अभी प्रभु की दया से बहुत सुरक्षित है अपनी कलीसिया के अंदर में, लेकिन कई भाई बहन लोग जो बाहर में हैं, जो देहातों में हैं, जो ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर अपने विश्वास के कारण उनके ऊपर में सताव आ रहे हैं, लोग उनके पीछे हैं, उनको कलीसिया में जाने के लिए मना करते हैं, अपने उनके घर जाकर वो पहरा देते हैं, उनको मारपीट करते हैं और उनको भगाते हैं। ऐसा भी जो सताव है, विश्वास के कारण सताव आएगा, और जब सताव आता है तब जो हमारी परीक्षा होती है तो उसमें हम कैसे रहेंगे, क्या डगमगा जाएंगे या स्थिर रहेंगे। यहां पर यही कहा है कि कई जगह पर आप और हम सुन रहे हैं कि घर वापसी हो रही है ना, घर वापसी हो रही है, लोग विश्वास में आए हैं, प्रभु में आए हैं, लेकिन सताव के कारण, दुख के कारण, कुछ ऐसे कारणों से वो वापिस जहां से आए थे उसी जगह पर उसी विश्वास में वापिस वो चले जा रहे हैं। याकूब यहां पर हमें ये समझाता है 12वीं आयत के अंदर में कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। फिर उसका कारण देता है, क्यों? क्योंकि वो खरा निकलेगा, वो खरा वहां से निकलेगा, वो उसमें से जाएगा। पिछले बार हमने बताया था कि सोना को अगर जितना हम गर्म करते हैं उतना वो खरा सोना निकलकर बाहर आता है, उसी तरह वो खरा निकलेगा जो विश्वास में बना रहेगा, प्रभु को जानेगा, प्रभु को पहचानेगा, वो विश्वास में बना रहेगा और खरा निकलेगा। और उसके बाद में लिखा है, खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ा है। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय के अंदर में वहां पर 25 आयत के बाद में ये लिखा है कि बहुत सारे लोग जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और वो हर बातों में संयम रखते हैं, इसलिए वो संयम रखते हैं ताकि उनको मुकुट मिले, ताकि उनको कुछ इनाम मिले। उसके लिए वो संयम रख के प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, सुबह में उठते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, हर किस्म का संयम रखते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, संयम से चलते ताकि वो जीत सके। और फिर वहां लिखा है कि अगर जो नष्ट होने वाले मुकुट के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जो मुकुट ना नष्ट हो, या ऐसा मुकुट हमको मिलने जा रहा है जो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर में, जो मुकुट कभी नष्ट नहीं होगा, तो ऐसे मुकुट के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना संयम रखते हैं। ये मुकुट क्या है, कौन सा मुकुट हमें मिलने वाला है, कौन सा मुकुट हमें दिए जाने वाला है, यहाँ पर हम देखते हैं। भाई संजय परिकर हमेशा ये बात हमको बताते रहते हैं, जब बाहर हम मिलते हैं या जब भी बात करते हैं, तब वो कहते हैं, जब तक मेरी आँख बंद हो जाए, या जब मेरी आँख बंद हो जाए तब मैं प्रभु में पाया जाऊँ। उनका ये कहना है कि अंतिम दिन तक मेरी आँख बंद होने की हो तब मैं प्रभु में पाया जाऊँ। मरकुस 13:13 के अंदर में यही लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज रखेगा, धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज रखे रहेगा उसी का उद्धार होगा। का मतलब हमारा उद्धार क्या नहीं हुआ है? नहीं, हमारा उद्धार हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पापों की क्षमा हमने प्राप्त की, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आया, हमको धर्मी ठहराया गया, हम धर्मी कहलाते हैं। और अब इस समय में जब हमने प्रभु पर विश्वास रखा है, धर्मी ठहराया है, अब हम उस प्रक्रिया से जा रहे हैं, और जिस प्रक्रिया को हम पवित्रीकरण कहते हैं, कि प्रभु हमें हर एक घटना से, परीक्षा से लेके जाता है और हम नीचे गिरते हैं, ऊपर उठते हैं, और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, वो जो हमें धीरे धीरे पवित्र बनाता है प्रभु, क्योंकि हम उस पवित्र जगह पर हमको जाना है, और उस पवित्र जगह स्वर्ग में जहाँ पर जाना है, वहाँ पर ये प्रक्रिया से आज हम जा रहे हैं, पवित्रीकरण की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। और एक दिन हम प्रभु के पास में जब जाएंगे तो वहां पर हम महिमाविंत होंगे, महिमाविंत ठहराए जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमें मिलेंगे, जब उनको हम आमने सामने में देखेंगे, जब हमारी मृत्यु होगी या प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब उसके पास में जाएंगे तो हमारे सारे पापों को माफ किया है, लेकिन हमको उन सब में से निकाल के अंतिम में जो उद्धार मिलने वाला है उसकी बात हो कर रहा है, कि वो जो उद्धार मुकुट जो है वो उद्धार है हमारा, जो हमें मिलने वाला है, हमें मिला है परमेश्वर का राज्य। उसके बारे में हम सीखेंगे आने वाले दिनों में कि परमेश्वर का राज्य हमारे यहाँ पर आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है, परमेश्वर का राज्य आने वाला है, और जो आने वाला है अब हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो मुकुट हमें मिलने वाला है, जो उद्धार का शाबाश मेरे बेटे मेरी बेटी, तो वहां तक अंतिम आंख बंद हो जाए तब तक हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें मेहनत करनी है और वहां पर हमें जाना है। परमेश्वर हमें सहायता करे कि वो जीवन का मुकुट हम प्राप्त करें, और हम विश्वास में, और परीक्षा जब आती है तो परीक्षा में हम स्थिर रहे, चलते रहे, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त करें। 13 आयत के अंदर में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर विषय बदल जा रहा है, परीक्षा खत्म हो गई, अब जो विषय याकूब यहां पर लेता है, और याकूब यहां पर यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पर जो परीक्षा का जो शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो अलग है, ये अलग विषय है। इसको प्रलोभन कहा गया है अंग्रेजी में, जिसे टेम्पटेशंस कहते हैं, टेम्पटेशन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये प्रलोभन, तो आइए हम प्रलोभन के बारे में देखें, टेम्पटेशन के बारे में देखें। हमने परीक्षा या तो टेस्ट के बारे में देखा, अब यहाँ पर विषय को बदलते हुए वो कहता है कि प्रलोभन या टेम्पटेशन। प्रलोभन का मतलब क्या है? अभिलाषा, हम आगे देखेंगे उसमें। लोभ, ये जो प्रलोभन है, प्रलोभन के बारे में याकूब जब यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारे अंदर में लालसाएं जो आती हैं, या तो कुछ गलत करने की उत्कंठा जो हमारे अंदर में पैदा होती है, और उसको हम प्रलोभन कहते हैं, जो हमें खींचता है गलत काम करने के लिए। कल रात में कॉटेज मीटिंग में थे और उस समय में मिठाई हमारे सामने में दी जा रही थी और मुझे बहुत इच्छा हो गई मिठाई खाने की, लेकिन मुझे मिठाई खानी नहीं थी। 5 बजे के बाद में मैं मीठा नहीं खाता हूँ क्योंकि डायबिटीज है, और इसीलिए ये नियम बनाया है कि 5 बजे के बाद में, वैसे 6 बजे के बाद में, लेकिन 5 बजे हम नहीं खाएंगे। तो मिठाई का जो प्लेट हमारे सामने में आया तो हमने मिठाई उठा ली उसमें से, और फिर बिल्कुल याद आया कि नहीं मुझे नहीं खाना है, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा था हमने रख दिया। उत्कंठा कुछ गलत करने की, कुछ जो हमने थाना है उसके विरोध में जाने की जो उत्कंठा होती है उसको प्रलोभन कहते हैं। और यहाँ पर जब याकूब ये लिखता है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय में, यानी कि प्रलोभन के समय में, यह ना कहे कि मेरा प्रलोभन या ये जो लालसा या परीक्षा परमेश्वर की ओर से। प्रलोभन कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये साफ यहाँ पर करना चाहता है कि जो उत्कंठा होती है या पाप में गिरने की इच्छा होती है वो प्रभु की तरफ से नहीं होती है। क्यों? वो इसीलिए कि हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर, परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो चरित्र है, उसको हम देखना हमें बहुत जरूरी होता है कि परमेश्वर का जो मूल स्वभाव, मूल स्वभाव, सारे स्वभाव का जो निचोड़ हम अगर निकालते हैं तो परमेश्वर का जो मूल स्वभाव है या चरित्र है वो एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। एक सिक्का अगर हम लेते हैं उसके दो पहलू है, एक तरफ में पवित्रताई या तो पवित्र होली, दूसरी तरफ में प्रेम। हमारा परमेश्वर जो बना हुआ है इस बात से बना हुआ है कि वो पवित्र है और वो प्रेमी है। जब परमेश्वर पवित्र है जिसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गंदा सोच नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है, जो प्रेम करना चाहता है, उस परमेश्वर के जो मूल स्वभाव के अनुसार में वो परमेश्वर हमेशा, अगर हम दूसरा कहे तो वो भला परमेश्वर है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। ना एक भाई हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे पिछले महीने में, और वो बहुत निराश होकर आया और निराश होकर बैठ के कहा कि भैया हम ख़त्म हो गए, सब कुछ लूट गया। तो हमने बोला क्या हो गया? बोले कि मुझे लग रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं इस दशा से बाहर आऊँ, ना मैं जिस दशा में हूँ मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया, ईश्वर परमेश्वर नहीं चाहता, ये प्रभु जी कहता है कि ऐसा ही रहूँ और प्रभु जी के कारण मैं ऐसा हो। तो वो वहाँ पर उसकी जो दशा थी उस दशा के लिए प्रभु जी को, परमेश्वर को वो बोल रहे थे, लेकिन फिर हमने उनसे यही बात की कि परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर तो प्रेमी है, और जो पवित्र है जो प्रेमी है वो परमेश्वर भला है, और भला होने के नाते वो बुरा नहीं कर सकता। और इसीलिए यहाँ पर याकूब कहता है 13वीं आयत में, कोई भी व्यक्ति प्रलोभन के समय में यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर बुरा नहीं करता, उसका स्वभाव ऐसा है नहीं। हम बुरा कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव पापी स्वभाव है, और उसमें हमने जन्म लिया, प्रभु यीशु मसीह में हमको माफी मिली है, हमको पवित्र बनाया गया, लेकिन वो दोनों स्वभाव को लेकर हम आगे जा रहे हैं और हम गलत कर सकते हैं, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और हम परीक्षा में दूसरों को गिरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करेगा क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, और इसलिए वो भला परमेश्वर है और भला परमेश्वर गलत काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आगे देखते हैं, क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है। हम परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं कर सकते बुरी बातों से, और न वो हमारी परीक्षा करेगा। तो कैसे प्रलोभन कैसे आता है? 14वीं आयत में वो वहां पर ये लिखता है कि प्रलोभन में हम कैसे गिरते हैं। प्रलोभन में यहाँ लिखा है कि हम अपनी स्वयं की इच्छा से, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर वो फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 14वीं आयत, अपनी ही अभिलाषा में फंसकर वो प्रलोभन में गिर जाता है, वो टेम्पटेशन में गिर जाता है। उत्पत्ति के 3रे अध्याय के अंदर में हमने देखा आदम और हवा, और हवा जो पहला पाप उसके बारे में हमने देखा। उसके अंदर में जो ढांचा दिया गया है या तरीका दिया गया है पाप में गिरने का, तो उसमें उत्पत्ति के 3रे अध्याय में 1 से 13 तक हमने पढ़ा जो आदम और हवा का पाप या पाप का आरंभ कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। शैतान हवा को फुसलाता है, हवा को बहकाता है, हवा को कहता है, और उसके बाद में वो उसको प्रश्न करता है। प्रश्न ये करता है जो गलत प्रश्न है, पहली आयत में यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना। ये बहुत ही अटपटा प्रश्न पूछता है कि सचमुच में कहा है, उसको भी मालूम था, लेकिन वो पूछ रहा है कि सचमुच में ऐसा ही कहा कि इस वाटिका में जो फल है, जो वृक्ष है, उसके फल तुम मत खाओ। और फिर स्त्री यहाँ पर बताती है, हवा यहाँ पर बताती है, थोड़ा सा ज्यादा वो बता देती है। उसमें लिखा है कि स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच में है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। वहां पर यह नहीं लिखा था कि नहीं कहा था कि नहीं छूना, लेकिन नहीं खाना। और ये स्त्री कहती है कि न तो छूना और न खाना, लेकिन फिर वहां पर शैतान जो है स्त्री को भरमाता है और यहाँ कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, 4वीं आयत, तुम निश्चय न मरोगे, परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। यानी कि स्त्री ने जो कहा था उसको वो और ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है, जब तुम खाओगी ना तो क्या होगा कि तुम भले और बुरे, यानी कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। और जब ये जो बातें कही शैतान ने, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? अगली आयत के अंदर में, 6 आयत के अंदर में यहाँ पर लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, ये पहली बात उसके अंदर में आई कि जो अभिलाषा, खाने की अभिलाषा, फल उसने देखा तो कहा कि कितना अच्छा है, खाने योग्य है, उसको खाना चाहिए, है ना, उसमें रस है, उसमें मलाई है, जो भी उसने सोचा होगा कि बहुत बढ़िया, मुझे खाना चाहिए, और उसकी जो अभिलाषा, उसको खींचाव हुआ उसको खाने के लिए। और फिर आंखों के लिए लुभावना, आंखों के लिए लुभावना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत खूबसूरत, कलर बहुत खूबसूरत, उसका आकार बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ देखा होगा उसने और वो बहुत लुभावना था उसकी आंखों के लिए। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं उसी के अंदर में, तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य, बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य, यानी कि वो घमंड आया कि मैं परमेश्वर के जैसे भला और बुरा जानने लग जाऊंगे, हम लग जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, ये घमंड उसके अंदर में आ गया। एक तो खाने की इच्छा, आंखों की लालसा और घमंड। प्रभु यीशु मसीह का, जब प्रभु यीशु मसीह को की परीक्षा हुई तो वहां पर भी यही बात बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह को रोटी खाने के लिए, बहुत इच्छा करने के लिए शैतान ने बहकाया, फिर उसको दिखाया कि ये सारा कुछ तुम्हें दिया जाएगा, और फिर प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा कि अगर तुम दंडवत करोगे मुझे तो तुम्हें मैं अधिकार दूंगा, राजकुमार बना दूंगा। वो भी उसी पैटर्न उसका वही है। और यूहन्ना के 2रे अध्याय में, 1 यूहन्ना उसके 2रे अध्याय में भी ये लिखा है कि डू नॉट लव द वर्ल्ड एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड द लव ऑफ फादर इज नॉट इन हिम। परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। और उसके बाद में 16वीं आयत के अंदर में लिखा है कि संसार और संसार का प्रेम जाता रहेगा, और फिर उसमें लिखा है कि अपनी अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, यानी पाप जो हम उसमें पढ़ते हैं प्रलोभन में जब आते हैं, तो प्रलोभन उसी रीति से हमें हर बार खींचता है। लालसा होती है, अभिलाषा होती है, हमारी खुद की अभिलाषा, आंखों की लालसा, जीवन का अहंकार, पाप का पैटर्न। पाप उसी रीति से हम सबको घर बना लेता है, हमारे अंदर में आने की कोशिश करता है। और 16वीं आयत में कहते हैं इसीलिए कि धोखा मत खाओ। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। ऐसा ना कहो कि प्रलोभन तो परमेश्वर की तरफ से है, ऐसा ना कहो। प्रलोभन हमारे अंदर से आता है, उस पर हमें विजयी पाना है, उससे हमें बाहर आना है। प्रलोभन हमें नष्ट कर देगा, प्रलोभन हमें ख़त्म कर देगा। रात में हम कुछ एक हफ्ता पहले जब सो रहे थे, तो मच्छर जब बहुत अच्छी नींद आ रही थी तो गुनगुना रहे थे, आवाज़ कर रहे थे वो, तो मच्छरदानी नहीं लगाई थी ऐसे ही, तो मच्छर को भगाने के लिए हम झट से ऐसा हाथ भगाते मच्छर, और कोशिश करते हैं कि उसको मार दे कि अच्छी नींद आ जाए। या तो फिर हम ये करते हैं मच्छर को भगाने के लिए, ओढ़ के सो जाते हैं। प्रलोभन भी ऐसा है, गुनगुनाता है, अगल बगल में आता है। पंछी का उदाहरण आपको मालूम है कि अगर पंछी आपके सर के ऊपर में मंडरा रहा है, मंडराता है, और फिर आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी चोंच नुकीली है, तुम्हारा कलर बहुत अच्छा है, फिर हम कहते हैं कि आओ बैठो सर के ऊपर में, फिर बैठ जाता है। फिर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, घोंसला बना लो। घोंसला बनाने के लिए उनको बैठा देते हैं, फिर घोंसला बनाते हैं, अंडे देने हैं, दे दो अंडे भी दे दो, फिर अंडा देता है, फिर कहता है कि चूजे निकालना है। पाप को जलता है, मंडराता है, हम जगा देते हैं, अंडा फोड़ता है पाप। वही लिखा है यहाँ कि 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींच कर वो फंस कर परीक्षा में पड़ता है, जब अभिलाषा गर्भ होती है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परीक्षा प्रलोभन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर पाप को जलता है, पाप उसमें से निकलता है। इसीलिए धोखा मत खाओ, खुद हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। और आखिरी दो वचन हम जल्दी जल्दी बस उसको पढ़ के खत्म करेंगे। प्रत्येक अच्छी वस्तु और हरेक उत्तम दान तो ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं है और न छाया के समान परिवर्तनशील है। परमेश्वर ज्योति है, उसने सूरज, चंद्र, तारा सबको बनाया है, और उसी उसको बनाने वाला खुद ज्योति है। हमारा परमेश्वर ज्योति है, यानी कि उसमें कोई अंधेरा नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात छिपी नहीं है जो दिखती नहीं है, वो पाक है, वो साफ है। और वो ज्योतियों के पिता जब कोई दान या कोई वरदान या कोई चीज देते हैं तो वो अच्छा देते हैं। यहाँ पर यही लिखा है आयत में, प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और न छाया के समान परिवर्तनशील रहता है। ना सूरज, चंद, तारे बदलते रहते हैं, धूप छाव आती है, लेकिन हमारी जो ज्योति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी बदलने वाला नहीं है और वो परिवर्तनशील नहीं होता है, आज कल और हमेशा युगानुयुग वो वैसा ही, वैसे के वैसा ही है। और उसने 18वीं आयत में कहा कि उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है। सत्य का वचन प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 1:1-3 के अंदर में प्रभु यीशु मसीह वचन है, और उस सत्य के वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, शुभ संदेश के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारा प्रभु महान है जो हमें प्रेम करता है, हमें उद्धार उसने दिया है, और वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है, जिसे हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानो प्रथम पल है। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको गाड़े जाने के बाद में वो फिर से जी उठे। मनुष्य के लिए सबसे पहले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को में से जी उठे, और वही विश्वास प्रथम फल जो है मृत्यु में से जी उठने वाला, और हम जो उसके संतान हैं हम भी मृत्यु को में से जी उठने वाले हैं। प्रभु का वचन हमें ये कहता है, और जब प्रभु यीशु मसीह लौटेंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो हमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने में प्रस्तुत करेंगे, एक ऑफरिंग के जैसे हमें प्रस्तुत किया जाएगा, हमें दिया जाएगा कि ये देखो ये प्रथम फल है। और इसीलिए भाई और बहनों, जब हम इसमें से जाते हैं, अगर आप में से कोई परीक्षा में है तो ये बातें सुनिए, परीक्षा आपको बनाती है, बनाता है, परीक्षा आनंद की बात है, परीक्षा अच्छी है, धीरज उत्पन्न करती है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमें अवसर देती है। परीक्षा जब आती है वो जीवन का मुकुट हमें प्रदान करती है जब हम उसमें से बाहर आते हैं, हमें परिपक्व बनाती है। परीक्षा हमें संपूर्ण बनाने की कोशिश करती है। परीक्षा हमारे लिए अच्छा, ईश्वर की तरफ से ये मकसद है और इसीलिए हम परीक्षाओं से जाएंगे। तो जब भी आप परीक्षा से जा रहे हैं, अगर आप आज भी कोई परीक्षा से जा रहा है, तो हम आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको परिपक्व बना, आपको अवसर दिया जा रहा है कि प्रभु को पहचानने के लिए। लेकिन प्रलोभन आपको डुबाएगा, आपको बनाएगा नहीं, आपको डुबाएगा, आपको नीचा खींचेगा, आपको लुभाता है प्रलोभन, आपका जमीर और सब कुछ वो लेके डूबता है प्रलोभन अगर आता है। हमारे पापी हृदय को वो उजागर करता है कि हम कितने पापी है, प्रलोभन के जरिए हम दिखाई देते हैं। खुद को खुश करने की योजना है प्रलोभन, वो परमेश्वर को खुश नहीं करता, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने आप को खुश करता है प्रलोभन। प्रलोभन पाप करवाता है, हमें खत्म करने की योजना करता है, हमें मृत्यु देता है। परमेश्वर की तरफ से नहीं है प्रलोभन, परमेश्वर भला है, आपको खाली कर देता है, आपको अशुद्ध करके, अशुद्ध मनोवृत्ति उस प्रलोभन के अंदर में होती है। तो आइए हम उसको परखे, परीक्षा को परखे, प्रलोभन को परखे। प्रलोभन से जा रहे हैं हिम्मत रखिए, परीक्षा से जा रहे हैं हिम्मत रखिए, प्रलोभन से जा रहे हैं रुक जाइए, देखिए उसमें से बाहर आइए। प्रभु हमें सहायता कराइए, हम प्रार्थना करें।